राष्ट्रीय महाविद्यालय में श्यामला नाम की एक लड़की और कुमार स्वामी नामक एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ते थे। उन दोनों के बीच कुछ प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हुआ। यह क्रम एक बरस तक चलता रहा, लेकिन अब जाकर उसका भंडाफोड़ हो गया। महाविद्यालय को कलंक लगने की आशंका उत्पन्न हुई। प्राचार्य शिव राव ने इस बारे में श्यामला की माँ पंकजम्मा से बातचीत भी की। पंकजम्मा पहले तो बहुत बिगड़ी, पर अंत में चुप हो गई। पहले उसने अपनी लड़की को डांटा और कुमार स्वामी को घर आने से मना कर दिया। आपत्ति केवल इतनी थी कि कुमार स्वामी गरीब था, बाकी पंकजम्मा भी किसी ब्राह्मण युवक से अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे कुमार स्वामी का उनके यहाँ आना जाना फिर शुरू हो गया। कुमार स्वामी गोरा और दुबरा पतला युवक था। वह एंकी पाटलू खूब गाता था। पाद टिप्पणी में है, एंकी पाटलू तेलुगु का प्रसिद्ध तथा अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत, जिसका इतिवृत्त एक ग्रामीण युवक और युवती की प्रेम गाथा है। धर्माराव पंकजम्मा को पहचानता था। एक दो बार वह विद्यालय में आई थी। पंकजम्मा के सारे खेत गुंडेरू नदी के आसपास पश्चिम दिशा में रेल लाइन के किनारे थे। लोग कहते थे कि उनके पास 200 एकड़ जमीन है। वह सब जमीन पंकजम्मा के पति ने स्वर्गीय जमींदार के जमाने में हिसाब किताब में गोलमाल करके हड़प ली थी। 5-6 साल पहले जब इस जमीन पर पंकजम्मा के पति ने कब्जा करना चाहा, तो दीवान नागेश्वर राव ने बाधा डाली। मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा और पंकजम्मा की जीत हुई। उसका पति रामी रेड्डी बड़ा चतुर था, इसीलिए उसने पंकजम्मा से शादी की थी। रामी रेड्डी पहले बहुत गरीब था। किसी रिश्तेदार की कृपा से उसे जमींदार के पास नौकरी मिल गई। नेल्लूर प्रांत में जमींदार के 4-5 गांव थे। उन पर रामी रेड्डी को अधिकारी नियुक्त किया गया। उसका वेतन 15 रुपये मासिक था। वह कभी कभी सुवन्नापेठ आता रहता था। किसी अनुकूल समय पर भूतपूर्व जमींदार को धोखा देकर इस 200 एकड़ जमीन का पट्टा उसने अपने नाम करवा लिया। जमीन पहले तो केवल बंजर थी, पर धीरे धीरे सिंचाई के पानी से उसमें धान की खेती होने लगी। रामी रेड्डी का उद्देश्य था कि पूरे 200 एकड़ में धान की खेती करे, परंतु इतने में वह चल बसा। उसकी पत्नी पंकजम्मा अब उसी प्रयत्न में जुट गई। पंकजम्मा के मायके वाले द्रविड़ प्रांत के थे। उनके पिता ने उनके बचपन में ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने कई बार मुलाजिमतें करके काफ़ी पैसा कमाया और अपनी इकलौती लड़की पंकजम्मा के नाम सब कुछ लिख छोड़ा। आखिरी दिनों में उसका विश्वास ईसाई धर्म से उठ गया। ईसाई लोग यूँ तो कहते हैं कि उनमें कोई भेदभाव नहीं, सब समान हैं, पर सचमुच उनमें असंख्य शाखाएं हैं। यूरोप वालों का एक चर्च है, भारतवासी ईसाइयों का दूसरा। यहाँ बालों को गोरे लोग पास फटकने नहीं देते। इनसे मेल जोल रखने से गोरे लोग समझते हैं कि उनकी जाति का गौरव नष्ट हो जाएगा। पंकजम्मा के पिता को यह सब पसंद ना आया। उसे दुख होने लगा कि इस धर्मांतर के झमेले में उसका ब्राह्मणत्व जाता रहा। फिर से ब्राह्मणों से जा मिलने की उसकी बड़ी इच्छा थी, पर यह संभव न था। वह गांव के अपने पुराने रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाने लगा, ईसाइयों की निंदा करने लगा। वह कहता कि ईसाई लोग अपना काम निकालते ही उदासीन हो जाते हैं, लोगों का तिरस्कार करने लगते हैं। दूसरों को अपने धर्म में मिला लेने की धुन ही उन पर 8 पहर सवार रहती है, परंतु धर्मांतर के उपरांत सबको समान गौरव देना या अन्य धर्मावलंबियों से मनुष्यों का ऐसा व्यवहार करना भी वे नहीं जानते। पंकजम्मा के जन्म के समय उसके माता पिता का धर्मांतर नहीं हुआ था। जब वे ईसाई बने वह 1 बरस की थी। उसके माता पिता को अपने धर्मांतर पर बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमारी संतान से कौन विवाह करेगा। यह सोचकर उसने गृहस्थी छोड़ दी। पंकजम्मा के माता पिता आखिरी दिनों में ईसाई धर्म छोड़कर आर्य समाजी बन गए। वैसे आर्य समाज के प्रति उनके मन में आदर न था, पर वे चाहते थे कि ईसाई धर्म से उनका कोई संबंध न रहे। उन्होंने पंकजम्मा के लिए कोई ब्राह्मण वर खोजने के लाख प्रयत्न किए, पर सफलता नहीं मिली। रामी रेड्डी के मन में धन की लालसा थी। धन प्राप्ति के लिए वह कोई भी काम कर सकता था। पंकजम्मा के पिता के पास 10-15 हज़ार नकद थे। 10-11 एकड़ जमीन थी। रामी रेड्डी जानता था कि वह सारी जायदाद पंकजम्मा की होगी। यह सोचकर रामी रेड्डी उसके प्रति आकर्षित हुआ और उसे अपने जाल में फंसाने में सफल रहा। पंकजम्मा के पिता को यह पसंद न था, परंतु पंकजम्मा तथा रामी रेड्डी का संबंध सारे गांव में उजागर हो गया। इसी से उनका विवाह अनिवार्य हो गया। विवाह के बाद पंकजम्मा के माता पिता चल बसे और सुवर्णापेठ आकर रहने लगे। एक दिन कुमार स्वामी धर्माराव के पास आकर कहने लगा, बाबूजी, मेरा विवाह अभी हो जाना चाहिए। अब नहीं होगा तो पता नहीं श्यामला मुझे मिलेगी भी कि नहीं। जैसे हो आप मेरे विवाह का प्रबंध करवाइए। धर्माराव, क्या बात हुई जो इतना घबरा रहे हो? कुमार स्वामी, घबराने की कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। धर्माराव, कोई ना कोई बात अवश्य है, साफ साफ बताओगे तो आऊँगा। कुमार स्वामी, 2 महीने हुए, एक BSc पास युवक पंकजम्मा के घर आया था। वह नेल्लूर का निवासी था। उसका कुल गोत्र आदि कुछ ठीक नहीं। हमारे साथ वह भी काशी में पढ़ रहा था। उसका नाम चक्रवर्ती है, असली नाम यह नहीं है। उसके पिता वैष्णव ब्राह्मण थे और माँ नीच कुल की थी। माता पिता दोनों मर चुके हैं। मरने से पहले पिता ने उसे 10,000 रुपये दिए थे। चक्रवर्ती बड़ा मक्कार है। उसने गरीब होने का ढोंग रचकर काशी में चंदा जमा किया और छात्रवृत्ति प्राप्त की। वहाँ भी जब वह होटल जाता है तो मित्रों के साथ ही जाता है। औरों की हर वस्तु वह अपना ही समझता है। परसों फिर आधम का मेरे सारे कपड़े खुद पहनने लगा है। उससे श्यामला का परिचय काशी में हुआ था। अब 70 रुपये महीना की छात्रवृत्ति पर MSc पढ़ने के लिए उसे काशी विश्वविद्यालय से बुलावा आया है। वह अंग्रेजी में कविता भी लिखता है। वहाँ उसने प्रिंसिपल और प्राध्यापकाओं पर कविताएँ लिखी, वे सब उस पर लट्टू हो गए। धर्माराव, यदि श्यामला की शादी उससे हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा? कुमार स्वामी, आप मुझे बीच बीच में रुलाइए मत, अपनी राम कहानी सुनाने दीजिए। इस कमबख्त का असली नाम है चकैया। कौन जानता था कि यह पढ़ लिख कर बड़ा बन जाएगा, पर उसके भाग खुले हैं और देखते देखते वह चक्रवर्ती बन गया है। जब कभी यहाँ आता है श्यामला आठों पहर उसी से बातों में लगी रहती है। मेरे अस्तित्व का उसे भान तक नहीं रहता। 3 दिन पहले पंकजम्मा ने मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम BA पास करोगे तभी श्यामला से तुम्हारा विवाह संभव है, अन्यथा नहीं। ये सब लक्षण देखकर मैं घबरा रहा हूँ कि अंत में शायद मैं ठगा जाऊँगा, न इधर का रहूँगा न उधर का। धर्माराव, इस जबरदस्ती के नाते से तुम्हें क्या लेना देना है? कुमार स्वामी, मेरा परिवार मुझे वापस स्वीकार नहीं करेगा, मैं कहीं का न रहूँगा। धर्माराव, तो फिर मैं क्या करूं? कुमार स्वामी, पंकजम्मा आपको बहुत मानती है, आप आज शाम को वहां आइए। आपके आने से कम आज के लिए ही सही श्यामला और चक्रवर्ती का सैर सपाटा बंद हो जाएगा। धर्माराव, भैया ऐसे समाज में प्रवेश करके फिर मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। भले ही वे सैर करें सपाटा करें, तुम्हें ही समझना चाहिए कि उनका व्यवहार अच्छा है। आखिर सुशिक्षित ठहरे, बुरा काम क्यों करेंगे? कुमार स्वामी, कुछ भी हो आप आज शाम अवश्य वहाँ आइए। एक और बात बताना भूल गया, आजकल राधापति और मंगम्मा का हमारे घर आना जाना खूब लगा चल रहा है। पंकजम्मा राधापति को प्रकांड पंडित और समाज सुधारक मानने लगी है। धर्माराव, यह बात है? पहले तो उसने राधापति की हंसी उड़ाई थी। कुमार स्वामी, तब वह राधापति को ठीक ठीक नहीं जानती थी, अब जानती है। वह उससे हिंदी सीखना चाहती है। आपने उस व्यक्ति को देखा है? धर्माराव, किसे? चंगल राव को? कुमार स्वामी, हाँ हाँ, क्या समझ रखा है उसे आपने? देखने में औरत नुमा लगता है पर बड़ा गुंडा है वह। उसके सारे हाव भाव केवल दिखाने के हैं। उसने पता नहीं क्यों फलानुमेया प्रारंभ कहकर अड्डा जमाया है। वह रहस्य कभी अभी नहीं खुलेगा। मैं धीरे धीरे उसका पता लगा रहा हूँ, फिर कहीं बताऊँगा। यह कहकर कुमार स्वामी चला गया। धर्माराव भीतर आया। अरुंधति पूछने लगी, कुमार स्वामी सुशिक्षित जान पड़ता है, कह रहा था फलानुमेया प्रारंभ। धर्माराव, वह राष्ट्रीय महाविद्यालय में संस्कृत तथा आंध्र के पंच काव्य पढ़ चुका है। अरुंधति, यह नाता न जमे तो स्वजाति वाला कोई और नाता उसके लिए क्यों नहीं ढूंढ लाते? धर्माराव, उसके पास जायदाद नहीं है, केवल आर्षेय पौरुषेय संबंध तथा बुद्धिमत्ता देखकर आजकल के ब्राह्मण अपनी लड़की कहाँ देते हैं। कुमार स्वामी के कई रिश्तेदार गुंटूर में हैं, सब धनवान हैं। एक बड़ा वकील है, सगा मामा तहसीलदार है। कुमार स्वामी का परिवार भूखों मर रहा था पर किसी ने फटक कर नहीं देखा। आज के ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं। उनके दुर्व्यवहार के कारण ही आज सारे देश में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन जोर पकड़ रहा है। धर्मशास्त्र का मार्ग भिन्न है, इन ब्राह्मणों का मार्ग भिन्न है। इनमें दया तितक्षा आदि गुणों का नाम नहीं, ये सब धन देवता की आराधना करते हैं। स्वार्थी इतने हैं कि पूछते हैं, हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे, हम तुम्हारे घर आएंगे तो हमें क्या दोगे, यह है इनकी रीत। इतना ही नहीं, बेचारे कुमार स्वामी को उन्होंने निकम्मा ठहराया। उसके घर से न्योता जाता है तो सब लोग चांदी के लोटों और रेशमी कपड़ों के साथ भोजन करने इकट्ठे हो जाते हैं। खाने पीने में कोई कमी हो जाए तो फौरन शोर मचाने लगते हैं कि बड़े निकम्मे हैं, व्यवस्था करना नहीं आता तो भोजन पर बुलाया ही क्यों। कर्ज लेकर उन्हें पेट भर खिलाओ तो तत्काल प्रशंसा करते हैं। यह है आज के ब्राह्मणों की दशा। 50 वर्ष के बूढ़े भी विवाह कर लेते हैं, अपने और अपनी स्त्रियों के दुश्शील को छिपाने की चेष्टा करते हैं। खुद में ब्राह्मण गुणों का चाहे लेश भी न हो, परंतु दूसरों पर सदा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। किसी अन्य कुलवाले के पास भोजन करना अपराध है, हरिजनों का स्पर्श अपराध है, उनसे मिलकर रहना अपराध है, और इन अपराधों की सजा है बहिष्कार। स्वयं अपने लड़कों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाते हैं, उन्हें वकील बनाते हैं, तहसीलदार बनाते हैं। उनके चिरंजीव गोरे साहबों से मिलकर स्पेंसर होटल में आमलेट खाने लगे हैं, तब भी उनका कोई अपराध नहीं। परंतु कुमार स्वामी और पंकजम्मा के पास राज सत्ता नहीं है। आज सारी ब्राह्मण जाति नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है। सारे ब्राह्मण अधिकार और धन के पुजारी बन गए हैं, अपने धर्म का पालन करना अनावश्यक समझने लगे हैं। उनमें उत्तम गुण नहीं रहे, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। लड़कों के विवाह में भारी दहेज लेते हैं। धन की हविष इस मात्रा तक पहुंच जाए तो भ्रष्टता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। अरुंधति, तो क्या जो काम कुमार स्वामी कर रहा है उसी को आप अच्छा कह रहे हैं? धर्माराव, मैं ऐसा नहीं कहता। कुमार स्वामी भी आखिर क्या करता? जीने का उसे कोई उपाय नहीं दिखा, रिश्तेदारों ने सहायता नहीं की, पंकजम्मा उसे अपने खर्च से पढ़ा रही है, ज्यों त्यों गृहस्थी निभा रही है। जीवन निर्वाह हो तब कहीं धर्म की बात सूझती है, पर यहाँ तो जीने के ही लाले पड़े हैं। इसी से कहता हूँ, जो कुमार स्वामी कर रहा है वह आपत धर्म के नाते ठीक ही है। अरुंधति, धर्मशास्त्री में आपत धर्म का यही वर्णन है? धर्माराव, धर्मशास्त्रों में जो आश्रम धर्म बताए गए हैं उनका पालन क्या आज के ब्राह्मण कर रहे हैं? अरुंधति, कहते हैं कि 6 महीने का सहवास आदमी में काया पलट कर देता है। धर्माराव हंसकर, बड़ी चर्चा करने आई थी, अब क्यों तुम दबाती हो? अरुंधति, मुझे किसी ने पैसे खर्च करके यहाँ पढ़ाया था जो मैं आपसे चर्चा कर सकूँ। शाम को धर्माराव पंकजम्मा के घर गया। वहाँ पंकजम्मा, श्यामला, चक्रवर्ती, राधापति, मंगम्मा आदि सबकी बैठक जमी थी। धर्माराव का चक्रवर्ती से परिचय हुआ। श्यामला के वीणा वादन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सबको चाय दी गई। धर्माराव दिन में 2 बार भोजन के अतिरिक्त और कुछ खाता पीता न था, उसने चाय नहीं ली। पंकजम्मा बोली, बाबूजी हमारे घर चाय भी नहीं पियोगे? धर्माराव बोला, यह बात नहीं, चाय मुझे माफिक नहीं आती। और थोड़ी देर बाद धर्माराव ने पूछा, श्यामला और कुमार स्वामी का विवाह कब होगा? यह सुनकर चक्रवर्ती धर्माराव की ओर घूमने लगा। धर्माराव बोला, मेरी ओर घूरते क्यों हो? क्या इन दोनों की प्रेम कहानी आप नहीं जानते? मैं राष्ट्रीय महाविद्यालय में अध्यापक था, ये दोनों मेरे विद्यार्थी थे। तब ये दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। पंकजम्मा ने इनके विवाह के लिए अपनी सहमति दी थी। अब इनमें तनातनी चल रही है। पंकजम्मा कहती है कि बीए पास होने के बाद ही विवाह होगा, कुमार स्वामी चाहता है कि अभी हो। चक्रवर्ती, सच्ची बात तो यह है कि विवाह की प्रथा पर ही मेरा विश्वास नहीं। धर्माराव, तब तो आपसे चर्चा करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। जान सकता हूँ कि विश्वास क्यों नहीं है? चक्रवर्ती, मैं वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। धर्माराव, वाद के लिए नहीं, आपका मत जानना चाहता हूँ। राधापति, यदि आपको चर्चा करनी हो तो मुझसे कीजिए, मैं भी विवाह की प्रथा पर विश्वास नहीं करता। धर्माराव, कुमार स्वामी तुम्हें विश्वास है विवाह की प्रथा पर? कुमार स्वामी, हाँ है, श्यामला को भी है और पंकजम्मा को भी। धर्माराव, तब तो ठीक है, वर और वधू को विश्वास हो तो काफी है। जिन्हें विश्वास नहीं वे विवाह न करें, जिन्हें है उनके विवाह करने में क्या आपत्ति हो सकती है? धर्माराव की ये बातें चक्रवर्ती को उपहासजनक लगी। उसने झल्ला कर कहा, आपको विश्वास है या नहीं, आपकी बात क्यों नहीं कहते? धर्माराव, किस पर विश्वास? राधापति, बैंगन की भाजी पर। चक्रवर्ती, विवाह की प्रथा पर। धर्माराव, मैं विवाहित हूँ, एक बच्चे का बाप हूँ। चक्रवर्ती, विवाह करने भर से अनिवार्य नहीं कि आपको विवाह प्रथा पर विश्वास हो ही। धर्माराव, प्रत्येक विद्या में 4 दशाएं होती है, अधीत, बोध, आचरण तथा प्रचार। इन 4 दशाओं के सम्मिलन से ही विद्या संपूर्ण होती है। मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर औरों को सिखाता हूँ, स्वयं उस पर आचरण करता हूँ और औरों से कराता हूँ। ये हैं 4 दशाएं। जो अपनी समझ में नहीं आता उस पर आचरण करना, अथवा जो समझ में आता है उस पर आचरण न करना, हमारे शास्त्र में नहीं है। चक्रवर्ती, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में भूल हो। धर्माराव, हो सकता है। कुमार स्वामी, आप लोग तो हमारी बात छोड़कर आपस में चर्चा करने लगे। धर्माराव, चक्रवर्ती जी चर्चा नहीं करते, मैं भी उनसे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। राधापति, मैं तो कह चुका हूँ कि मैं चर्चा करूँगा। धर्मराव, ठीक है कीजिए। राधापति, संसार में सभी स्त्री पुरुषों में काम वासना होती है। जहाँ देखिए पति और पत्नी एक दूसरे के अतिरिक्त अन्यत्र भी अनुरक्त दिखते हैं। विवाह तो एक परिपाटी के रूप में हो रहा है, परंतु विवाहितों में सचमुच सोलहों आने पतिव्रता स्त्रियों का या एक पतिव्रती पुरुषों को दिखाना असंभव है। धर्मराव, क्या आप दिखा सकते हैं कि अमुक लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है? राधापति, लाखों दिखा सकता हूँ, मुझे तो अच्छे लोग कहीं दिखाई ही नहीं देते। धर्माराव, अच्छे लोग कहने से आपका मतलब पतिव्रता स्त्री और एक पत्नी व्रती पुरुष से ही है ना? तब जब ऐसे लोगों को आप अच्छा कहते हैं तो फिर उन जैसा रहना ही अच्छा ठहरा, न रहना बुरा ठहरा, यह तो आप ही की बात है, अलग चर्चा की आवश्यकता ही नहीं रही। चक्रवर्ती, पंडित लोग यही करते हैं, बातों का अर्थ तोड़ मरोड़ कर कुछ का कुछ लगा लेते हैं, ऐसा करना सचमुच चर्चा नहीं कहलाता। धर्माराव, चर्चा कहलाता है या नहीं इस पर चर्चा बाद में करेंगे। यह कहना कोई दलील नहीं कि संसार में आदर्श दाम्पत्य है ही नहीं। खरीदे हुए आम यदि सड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे आम हो ही नहीं सकते। क्या संसार भर में पतिव्रता स्त्री या एक पतिव्रती पुरुष होंगे ही नहीं? राधापति, मैं समझता हूँ कि नहीं। धर्माराव, यह आपका भ्रम है, मैं हूँ। राधापति, क्या आपकी बुद्धि कभी किसी पराये स्त्री पर जाती ही नहीं? धर्माराव, आप ठीक ठीक बोलिए, पूछिए कि क्या आपका मन नहीं जाता? मन अलग है, बुद्धि अलग। चंचल मन इधर उधर दौड़ सकता है, प्रयत्न करके उस पर काबू पाना पड़ता है। राधापति, क्यों पाया जाए? मन को स्वच्छंद छोड़ने में क्या आपत्ति है? धर्माराव, हम शिक्षा पा रहे हैं, सुशिक्षित होकर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यदि कोई पूछे कि शिक्षा क्यों पाएं, अच्छा व्यवहार क्यों करें, तो इसका कोई उत्तर नहीं। कोई अनपढ़ व्यक्ति सुशिक्षितों के बीच अच्छे ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता। इसी प्रकार अनियंत्रित मन गहन विषयों में सभ्य व्यवहार नहीं कर सकता, उसे आध्यात्मिक गौरव प्राप्त नहीं होता। कुछ विशिष्ट नियमों का पालन ही सभ्यता कहलाता है। हम अपने इष्ट मित्रों के साथ बिना किसी संकोच के बातें करते हैं, परंतु सभा में कुछ नियमों का पालन करते हैं, इसी का नाम सभ्यता है। नियमबद्ध शब्द योजना और सभ्य व्यवहार से सभा में व्यक्ति को गौरव प्राप्त होता है। इसी प्रकार नियमों के पालन से मन को भी गौरव मिलता है। जो इच्छा को दबाता है वह छोटा है, जो इच्छा को नियंत्रित करता है वही बड़ा है। राधापति, मैं आपको आपके सिद्धांतों को नहीं मानता। धर्मराव, तब चर्चा की बात क्यों करते हैं? पंकजम्मा, इस वेदांत चर्चा में समय बिताना कठिन हो रहा है, हम सब जमा हुए हैं तो हंसी खुशी की बातें करना बेहतर होगा, ऐसी गहन चर्चा सबको कहाँ पसंद आएगी। धर्माराव जी, आप बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ गाकर सुनाइए। चक्रवर्ती, धर्माराव जी इस समय बहुत गर्म है, अब उनके गाने का आग्रह न करो। श्यामला, मंगम्मा जी शायद गाना सीख रही हैं। राधापति, केवल गाने की ही क्या बात है, कल मैट्रिक की परीक्षा देगी, अंग्रेजी संस्कृत तेलुगु आदि कितनी बातों में निष्णात हो जाएगी। मंगम्मा, गुरुजी चेली का बखान नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मंगम्मा अब पुरानी मंगम्मा नहीं रह गई थी। मखमली चप्पलें, आंखों पर चश्मा, टेढ़ी मांग, हाथों में दो जोड़ी सोने की चूड़ियां, रेशमी साड़ी, सोने के पिन, आधुनिक सभ्यता के सारे उपादान उसके शरीर पर विद्यमान थे। वह अपनी बातों में कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने लगी थी, अपनी पंडिताई का सबूत देने के लिए बीच बीच में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करती थी। जब से धर्माराव वहां आया उसने मंगम्मा की ओर एक बार भी नहीं देखा। वह मंगम्मा की सारी पूर्व कथा जानता था, परंतु मंगम्मा धर्माराव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह धर्माराव के सम्मुख बैठने में किसी प्रकार की झिझक अनुभव नहीं करती थी। वह सोचती थी कि सबकी तरह धर्माराव को भी उसकी सारी बातें ज्ञात होंगी। उसे पता न था कि रामेश्वरम से धर्माराव को कितनी घृणा है, अतएव उसे यह भी ज्ञात न था कि धर्माराव को स्वयं उससे भी कितनी घृणा है। कुमार स्वामी, मंगम्मा जी सुना है आप फिर से सिनेमा चालू करना चाहती हैं। मंगम्मा, एक नाटक कंपनी भी शुरू करना चाहती हूँ। श्यामला, क्या नाटक में आप भी अभिनय करेंगी? चक्रवर्ती, अभिनय करना पाप है क्या? धर्माराव, नहीं नहीं, उस लड़की ने यूं ही पूछा, कौन कहता है पाप है? चक्रवर्ती, आप अंग्रेजी नाटक खेलेंगी तो मैं भी अभिनय करूंगा। राधापति, खेलना हो तो अंग्रेजी नाटक ही खेलना चाहिए, तेलुगु में नाटक है ही कहा, सचमुच तेलुगु में साहित्य है ही नहीं। ले देकर महाकवि तिकन्ना के नाम का बखान किया करते हैं, वह तो एक समाचार पत्र है। धर्माराव, आप तेलुगु के पंडित कहलाते हैं, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। राधापति, मेरी राय सचमुच यही है, धर्माराव, तो फिर आप तेलुगु में कविता क्यों लिखते हैं, अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते? चक्रवर्ती, तेलुगु कवियों में भावों की विशालता नहीं है, पुरानी चाल पर ही चलना चाहते हैं। समाज में, धर्म में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में नवीन मार्ग पर चलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसी कारण कहीं भी कोई प्रगति नहीं हो सकी। अंग्रेजी में देखिए एलेजी, सैटायर, कॉमेडी, ट्रेजडी, बलेट, ओड, सॉनेट आदि कितने ही प्रकार हैं, परंतु हमारे साहित्य में जहाँ देखिए अश्लील प्रबंध ही दिखाई देते हैं। धर्माराव, यह आपका भ्रम है। गौर से देखें तो पता चलेगा कि हमारे साहित्य में भी अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, पुराण, इतिहास, काव्य और उनके प्रकार, फिर नाटक और उनके 10 प्रकार, पद और उनके भिन्न भिन्न प्रकार, चाटु, शतक, स्तोत्र आदि। इनके अतिरिक्त लक्षण ग्रंथ हैं, शास्त्र ग्रंथ हैं, जो अंग्रेजी साहित्य में नहीं है। ये ग्रंथ शास्त्र का निर्देश भी करते हैं और स्वयं भी महाकाव्य के रूप में विद्यमान है। ऐसी विलक्षण रचनाएं किसी और देश में नहीं मिलेगी। चक्रवर्ती, आप तो संस्कृत ग्रंथों को भी तेलुगु में गिना रहे हैं। धर्मराव, क्या आपने लैटिन और ग्रीक प्रणाली के ग्रंथों को अंग्रेजी में नहीं गिनाया? क्या आप अंग्रेजी ग्रंथों का तेलुगु में भाषांतर नहीं कर रहे हैं? तेलुगु को अंग्रेजी में बनाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं? चक्रवर्ती, आपके सारे मत ईसा मसीह के पूर्व के हैं। धर्माराव, यह आपके मानदंड का दोष है। भावना शक्ति को काल मान से नापना बड़ी भारी भूल है। जान पड़ता है कि आपकी सम्मति में पाश्चात्य देशों में मत प्रामाणिक है। किसी विषय की चर्चा करनी हो तो अन्य संस्कारों से प्रभावित मन से काम नहीं चलेगा। आपका मन पाश्चात्य सभ्यता का दास बन चुका है, इसी से आप चर्चा करने के योग्य नहीं रहे। चक्रवर्ती, आप बड़ी ढिठाई से बातें कर रहे हैं। हमारा परिचय बहुत थोड़ी देर का है, इतने में ही आप सभ्यता का उल्लंघन करने लगे। धर्माराव, महाशय जी, केवल एक व्यक्ति से बोलने में सभ्यता का उल्लंघन हुआ है और आपने बिगड़ गए। जरा सोचिए तो, आपके विचारों से, आपके व्यवहार से एक दिव्य समाज पर संकट आ पड़ा है। आपने समाज की सभ्यता का उल्लंघन किया है, वह कोई दोष नहीं, और मैं व्यक्ति की मर्यादा का उल्लंघन करूं तो आप बिगड़ते हैं, यद्यपि वह भी मैंने नहीं किया है। एक बात पर चर्चा चल रही थी, चर्चा करते समय कहना ही पड़ता है कि आपकी राय गलत है, ऐसा कहने पर बिगड़ना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, मर्यादा के विषय में आपकी कल्पना बड़ी विचित्र लगती है। यथार्थ चाहे कुछ भी हो, आपका मत है कि बोलते समय बड़ी विनम्रता से बोलना चाहिए। यह तो अपनी अपनी राय है, अपना अपना आचरण है। क्या आप दूसरों के प्रति व्यवहार में तटस्थ रह सकते हैं? कुमार स्वामी, अब इस चर्चा को ही बंद करना ठीक होगा। धर्माराव, मुझे कोई आपत्ति नहीं, काफी देर हो चुकी है। यह कहकर धर्माराव वहां से चला गया। चक्रवर्ती बोला, राधापति जी, आप कैसे महानुभाव को यहाँ ले आए? इनके सारे विचार सड़े गले लगते हैं। पंकजम्मा, वे भी बीए पास कर चुके हैं। चक्रवर्ती, सचमुच पता नहीं, ऐसे लोग भी किस तरह बीए पास कर जाते हैं? राधापति, ऐसा न कहिए, वे बड़े योग्य और विवेकी हैं। उनकी बात से हम सहमत भले ही न हुए हों, उन्होंने योग्यता पूर्वक चर्चा की, यह तो स्वीकार करना ही होगा। चक्रवर्ती, उसकी सारी बातों को हम काट सकते हैं। कुमार स्वामी, फिर क्यों नहीं काटा? चक्रवर्ती, क्योंकि मेरा यही काम है। श्यामला, नहीं तो फिर इतनी देर तक चर्चा क्यों कर रहे थे? मंगम्मा, मेरी सम्मति में धर्माराव जी की बात ही ठीक है, उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रित करना चाहिए, कितनी अच्छी बात है यह। राधापति, जी हाँ, आप मन को बड़ी अच्छी तरह नियंत्रित कर सकती हैं। मंगम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। राधापति, ये सब किताबी बातें हैं। क्या धर्माराव सचमुच एक पत्नी व्रत का पालन करता है? उसने हम पर रौब जमाया, उसके मुँह पर हम भी ना कैसे कहते? पंकजम्मा, ऐसा ना कहिए, मैं उन्हें बहुत दिन से जानती हूँ, उनका शील प्रशंसनीय है। राधापति, क्या धर्माराव हर समय जितेंद्रिय बनकर रह सकता है? मन का ऐसा निग्रह कौन कर सकता है? कुमार स्वामी, इसका उत्तर तो धर्माराव दे ही चुके हैं। मन का निग्रह न कर पाना और बात है, और निग्रह न करने को ठीक समझना दूसरी बात। सांझ होने से पहले ही अंधेरा हो गया और भोजन के उपरांत सोने से पहले ही लिहाफ ओढ़ने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। अंधेरे में दीवारों पर जहां तहां जुगनू झिलमिलाते दिख रहे थे। भोजन से पहले ठंडे पानी में पांव धोना दूभर हो गया। जो भी कपड़ा पहनो, वह शरीर को ठंडा लगता था। कपड़ा ओढ़ने से कोई नई गर्मी नहीं आ पाती थी। गर्मी तो शरीर की थी, जो ओढ़े हुए कपड़ों को कुछ गर्म बना देती थी। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कड़ी धूप पड़ने लगी थी, तथापि पिछली बरसात में अधिक वर्षा होने के कारण शिशिर का जाड़ा घट नहीं पाता था। अंधेरा घनीभूत हुआ, आंगन में जाने के लिए भी दिए की आवश्यकता होने लगी। अरुंधति ने भोजन किया, पति पत्नी एक सेज पर सो गए। बच्चा सो रहा था, अरुंधति पति से लिपट गई। पति ने कुछ नहीं कहा, अरुंधति ने पति को चूम लिया, फिर भी वह चुप रही रहा। फिर अरुंधति ने पतिदेव के मुख को अपनी ओर घुमाने के लिए खींचा, पर वह हिला नहीं। अरुंधति बिगड़ गई और बोली, परिणाम दिखने लगा है धर्मराव, किस बात का परिणाम? अरुंधति, जिन घरों में जाना अनुचित है वहाँ जाने का। धर्मराव, उस परिणाम का लक्षण क्या है? अरुंधति, पत्नी के प्रति उपेक्षा। धर्मराव, हाँ हाँ ठीक है, इस बात का क्या भरोसा कि तुम पतिव्रता हो? सब लोग काम वासना रखते हैं, मन चंचल होता है, अचंचल मन वाले मनुष्य का आज तक जन्म नहीं हुआ। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सदा मेरा ही स्मरण करती रहती हो? अरुंधति, मनुष्य मनुष्य में जिस प्रकार वेश का, मुख लक्षणों का, आचरण का, चतुराई का अंतर होता है, उसी प्रकार मन का भी होता है। एक व्यक्ति घोर पाप करता है, दूसरा केवल कहता है कि पाप करूंगा, तीसरा केवल मन ही मन पाप करने की सोचता है, और चौथा पहले पाप की सोच कर फिर उस संकल्प को तज देता है। एक व्यक्ति पाप के बारे में कभी सोचता तक नहीं। अन्य बातों में सभी लोग इसी प्रकार की भिन्नता मानते हैं, परंतु वे इस बात की कल्पना नहीं कर पाते कि पाप का विचार तक न करने वाला भी कोई व्यक्ति हो सकता है। यह कोई प्रत्यक्ष दिखाने के नहीं, अनुमान से जानने की बात है। धर्मराव, तुम तो तर्कशास्त्र के शब्दों का प्रयोग कर रही हो, कहाँ सीखा है यह सब? अरुंधति, कहाँ सीखा, आप ही तो इतने दिन रहे अभिमुख। दूसरे दिन कुमार स्वामी आया। धर्मराव ने पूछा, कहो क्या हाल चाल है? कुमार स्वामी, कल रात आपके जाने के बाद सब लोग आपको फटकार रहे थे। धर्मराव, कौन कौन फटकार रहे थे? राधापति भी? कुमार स्वामी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुख्य आलोचक थे हमारे नपुंसक। धर्मराव, चक्रवर्ती, क्या कहा उसने? कुमार स्वामी, कहता था कि आपकी बातें निरा ढकोसला है, चक्रवर्ती के बारे में मंगम्मा आपका बचाव कर रही थी। धर्मराव, अच्छा, मैं तो वहाँ नहीं था, फिर वार कैसा और बचाव कैसा? कुमार स्वामी हंसकर, सचमुच आपने कल बड़ा कमाल किया। धर्मराव, क्या किया मैंने? कुमार स्वामी, मैं भी बेखबर था, सचमुच पंकजम्मा ने श्यामला से मेरा विवाह तय होने की बात चक्रवर्ती से छिपा रखी थी। सबके चले जाने के बाद एक मज़ेदार बात हुई। चक्रवर्ती मेरे पास आकर बोला, क्यों जी, आपके नाम श्यामला द्वारा लिखे गए पत्र मुझे दिखाएंगे? तब मैं ताड़ गया। मैंने श्यामला के दो तीन पत्र उसे दिखाए, बाकी को छिपा लिया। चक्रवर्ती ने उन्हें भी दिखाने का अनुरोध किया। इस पर मैं बोला, उन पत्रों में कुछ रहस्य है, दिखाना नहीं चाहता। उसने पूछा, क्या रहस्य है? मैंने जवाब दिया, क्या रहस्य हो सकता है भला? यह कहकर मैं हंस पड़ा। मेरी बातों की प्रतिक्रिया तुरंत दिख पड़ी। सारी रात चक्रवर्ती श्यामला से नहीं बोला। धर्मराव हंसता हुआ, तुम ही बताओ, क्या श्यामला अभी तक अनसुंघा फूल है? कुमार स्वामी, हमारे समाज में इसका कोई ठिकाना नहीं, हमें तो विवाह के बाद ही जांच पड़ताल करके देख लेना चाहिए, अपना संदेह भी प्रकट नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना जानता हूँ कि श्यामला मुझसे प्रेम करती है। धर्मराव, चक्रवर्ती यहाँ कब तक रहेगा? कुमार स्वामी, उसके दांत खट्टे हो चुके हैं, पता नहीं उनके झड़ जाने तक रहेगा या उसके पहले ही चला जाएगा। धर्मराव, केवल चर्चा करने के कारण मुझ पर उसे गुस्सा नहीं आया, जानते हो? कुमार स्वामी, हाँ हाँ जानता हूँ, खूब जानता हूँ। धर्मराव, तुम निरे बालक हो, चिल्लाते क्यों हो? सच तो यह है कि पंकजम्मा अपनी लड़की का विवाह किसी ब्राह्मण से रचाना चाहती है। चक्रवर्ती भले ही BSc पास हो, पर तुम ब्राह्मण हो। कुमार स्वामी, आप सच कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वे सब ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, पर खुद ब्राह्मणों का ही अनुसरण करना चाहते हैं। धर्माराव, ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों में यह प्रवृत्ति और अधिक होती है। मुझे स्मरण है कि एक बार मछली पट्टनम में दो ईसाइयों का झगड़ा हुआ, दोनों कॉलेज में प्राध्यापक थे, उनमें से एक का दादा ब्राह्मण था और दूसरे का बाप चमार। वह ब्राह्मण ईसाई एक दूसरे ब्राह्मण अध्यापक के पास जाकर कहने लगा, हम उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे, उसका बाप 16 आने चमार है, मेरे दादा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण अध्यापक ने पूछा, अरे भाई, इसी भेद को मिटाने के लिए तो तुम ईसाई बने थे, अब फिर वही भेद कहाँ से आ गया? इस प्रश्न का उस ब्राह्मण ईसाई ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, ईसाई बनने के बाद हमने ईसाइयों के आपसी भेदों की हिंदुओं की आपसी भेदों से तुलना की। ईसाइयों में रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंटों में लूथरन मिशन, इंग्लिश मिशन आदि अनेक भेद हैं, भिन्नता कहाँ नहीं है? भिन्नता न होती तो मनुष्य भी पशुओं की तरह झुंडों में जीवन व्यतीत करते। जहाँ धर्म की बात हो, भिन्नता आ ही जाती है, कौन अपना स्वार्थ छोड़ता है? कुमार स्वामी, आप सच कहते हैं, उस ब्राह्मण ईसाई ने मन की बात ज्यों की त्यों कह दी, कोई और होता तो न कहता। धर्मराव, आज की सभ्यता का प्रमुख चिन्ह यही है कि मन की बात प्रकट न करो और भीतर ही भीतर खिचड़ी पकाते रहो। कुमार स्वामी, आप आज फिर आएंगे? धर्मराव, अभी नहीं, दो चार दिन बीतने दो। कुमार स्वामी, आज ही आने में क्या आपत्ति है? धर्मराव, तुम नहीं समझते भाई, कह तो दिया, फिर कभी आऊँगा। शाम को धर्मराव कोठी की तरफ गया। जाते जाते उसने गोपन्ना का स्मरण हो आया। वह मन ही मन हंस पड़ा, सोचने लगा कितने बरस बीते गोपन्ना को गए हुए, अब मैं उसकी याद क्यों कर रहा हूँ। ओहो, 12 बरस बीते होंगे। कृष्णम नायडू, गोपन्ना, रुक्मिणम्मा राव, रंगा जम्मा, ये सभी लोग प्राचीन युग पुरुष से लग रहे हैं। मैं अभागा अकेला क्यों जी रहा हूँ। इस युग में मेरी कविता अरण्य रोदन सी हो गई है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। आज कृष्णम नायडू जीवित होते तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। मेरे पद्य पठन पर ही वे फूले नहीं समाते थे। खैर, यह दुर्भाग्य अकेले मेरा नहीं है। नौकरी ढूंढना चाहता हूँ पर कहीं कोई नहीं पूछता। आज अध्यापक वही है जो केवल शब्दों के अर्थ बताता है, विषय का बोध कराना निषिद्ध है। आज के सृष्टि परिणाम का एक भाग यही है कि महान अर्थ से ओतप्रोत वस्तु का नाश हो और अल्प प्रयोजन वाली वस्तु को खूब बढ़ावा मिले। परमाणु सदैव एक दूसरे के साथ भ्रमण कर रहे हैं, कब कौन सी आकृति धारण करेंगे यह कौन जानता है। महावायु के थपेड़े आकर आकाश में घटाएं इधर उधर बिखर जाती हैं, क्षण क्षण उनकी आकृति में परिवर्तन होता रहता है। जिनका जीवन ही क्षणिक है उनके लिए क्षण मात्र का परिवर्तन भी सुदीर्घ प्रतीत होता है। अनंत काल में ह्रस्य और दीर्घ की गिनती ही क्या है। शब्दों का अर्थ निर्णय बड़ा विचित्र है, आज कई शब्दों के अर्थ का निर्णय करना असंभव हो गया है। ऐसा सोचते हुए धर्मराव चल रहा था कि कुछ मोटर गाड़ियां उसके निकट से आगे को निकल गईं। ऐसा लगा कि चारों गाड़ियां चार समुद्रों की दिशा में दौड़ लगा रही हैं। कोठी के दक्षिणी भाग में मोड़ पर एक आम का वृक्ष था। स्वर्गीय जमींदार के समय में वह वृक्ष सुंदर पत्तों से सुशोभित मदन छत्र सा दिखता था। इधर गांव शहर में बदल गया। कई निठल्ले लड़के उस वृक्ष पर आक्रमण करके सारी कैरियां तोड़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए पत्ते और टहनियां आदि सब समाप्त हो गईं और कोठी की दीवार पर झुकी हुई एक शाखा के अतिरिक्त शेष वृक्ष भूड़ा सा बन गया। वहीं पान बीड़ी की एक दुकान खुली। बची हुई शाखा उस दुकान के ऊपर झुकी हुई थी। वह शाखा ही भौड़ी थी। उनके एक सिरे पर 10-5 पत्ते थे। धर्माराव ने उसे देखा। पत्तों के उस छोटे से झुरमुट में कोयल के कुपित नेत्र जैसे दो लाल कोपलें फूट आईं। ओहो, वसंत आ गया, पर कितना क्षीण लगता है। लेकिन क्षीण दशा में भी उसकी शोभा छिप नहीं रही है। कहीं से कोयल की कूक सुन पड़ी। हाँ, सचमुच वसंत आ पहुंचा है। अंधेरा छा गया। धर्माराव घर लौटा। उसने पूछा, रसोई बनी है क्या? अरुंधति कहने लगी, जीम कर कहीं बाहर जाना है। धर्माराव, कहाँ जाऊँगा, वसंत और बरसात में घर छोड़कर कहीं बाहर जाने को जी नहीं चाहता। अरुंधति, हाँ हाँ, वर्षा में बाहर जाओगे तो पाँव में कीचड़ लगेगा, वसंत में जाओगे तो सिर तपेगा। धर्माराव, अनधिगत रामायण यू की भांति तुम अनधिगत अलंकार शास्त्र यू बोल रही हो। अरुंधति, अब जाकर रसोई बनी है। मुझे क्या पता था कि आज आप इतनी जल्दी लौटेंगे।